हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 17 श्लोक संख्या 23। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, देवकी नंदनाय च, नंदगोपकुमाराय, गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय, नमः पंकजमालिने, नमः पंकजनेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रये, कृष्णात्वदीय पद पंकज पंजरांतम्। अद्यैव मे विशतो मानसराजहंसा, प्राणाप्रयाण समये कफवात पित्ते, कंठावरोधन विदो स्मरणं कुतस्त्व, स्मरतव्यं सततं विष्णु, विस्मर्तव्यो न जातु चेत्, सर्वविद्धि निषेदास्यो। एतयोरेव किंकर आराध्यो भगवान् ब्रजेशतनाय, तद्धाम वृंदावनम् रम्या काचिदुपासना व्रजवधु, वर्गीनया कल्पिता, श्रीमद्भागवतं प्रमाणममालं, प्रेम श्रीचैतन्य महाप्रभु मतमिदं, तत्राधरो न पर वंशी विभूषितकरा, नवनीरधाभा पीतांबर धरुण बिंब फल धरोष्ठा, पूर्णेन्द्र सुंदर मुखा, हरविंद नेत्रा, कृष्णात् परम किमपि तत्व अहम् न जाने। करारविंदे न पदारविंदम्, मुखारविंदे विनिवेशयन्तम्, पटस्य पत्र स्य पुटीशयानम्, बाणं मुकुन्दं मनसा स्मरामि, श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, जिहवेपि बस्वा मृतमेतदेव गोविन्द रामो धर्मादवेति नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायामुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्टिकी पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारभक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम् जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथ श्रीमद्भागवतम महापुराण की जय। प्रथम स्कंद अध्याय 17 श्लोक संख्या 23। इन अद्भुत शब्दों को मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। महाराज परीक्षित कह रहे हैं, अथवा देव माया नूनम गतिर अगोचरा चेतसो वचसश्चापि भूतानामिति निश्चय अथवा देव मायाया नूनं गतिर अगोचरा चेतसो वचसश्चापि भूतानामिति निश्चय अथवा देव मायाया नूनं गतिर अगोचरा चेतसो वचसश्चापि भूतानामिति निश्चयः। शब्दात् अथवा या कि देव भगवान मायाया अर्थात शक्तियां नूनम अत्यंत ही गति यानी चाल अगोचरा अचिंत्य चेतसा या तो मन से वचसा वाणी से च अथवा अपि भी भूतानाम सभी जीवों का इति इस प्रकार निश्चय निष्कर्ष निकला। अनुवाद, इस प्रकार यह निष्कर्ष निकलता है कि भगवान की शक्तियां अचिंत्य हैं। कोई ना तो मानसिक चिंतन द्वारा ना ही शब्द चातुरी द्वारा उनका अनुमान लगा सकता है। श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर रीति से समझाएंगे। हम सब ध्यान से श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य को श्रवण करेंगे। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, यहाँ पर यह प्रश्न किया जा सकता है कि भक्त को कर्ता की पहचान करने से क्यों विरत होना चाहिए, जब वह यह निश्चित रूप से जानता है कि भगवान ही सबके परम कर्ता है। परम कर्ता को जानते हुए मनुष्य को चाहिए कि वास्तविक संपन्न कर्ता से अज्ञ नहीं बना रहे। इस संदेह का यह उत्तर है कि भगवान भी प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी नहीं होते, क्योंकि उनके द्वारा नियुक्त माया शक्ति के द्वारा ही सब कुछ संपन्न होता है। माया सदैव भगवान की परम सत्ता के विषय में संदेह उत्पन्न करती है। धर्म अच्छी तरह जानता था कि परमेश्वर की इच्छा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता, तो भी माया उसे संशय में डाल रही थी, जिससे वह परम कारण बताने से कतराता रहा। यह संशय कली तथा माया दोनों के कलमश के कारण था। कलयुग का सारा वातावरण माया के कारण विशाल रूप में दिखता है और इसकी माप अकत है। एक बार फिर से लास्ट वाला देखिए कि यह संशय कली तथा माया दोनों के कलमश के कारण था। कलयुग का सारा वातावरण माया के कारण विशाल रूप में दिखता है और इसकी माप अकत है। श्रील प्रभुपाद की जय हो। मूकं कुरु तु वाचालं पंखुं लंघयति गिरं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं। जब महाराज परीक्षित ने कलयुग के जो रूप में शूद्र जो उसको मार रहा था बेल को, तो बेल से जब पूछा मुझे बताओ कि कौन है तुम्हारे कष्ट का कारण, तो बेल जानते हुए भी कि मुझे कष्ट कौन दे रहा है, वो शूद्र दे रहा है, और लेकिन फिर भी उसने कहा कि मुझे नहीं खबर, मैं तो खुद भ्रमित हूँ, कोई क्या बताता है, कोई क्या बताता है, कोई ये कहता है कि हमारे ही कर्मों के अनुसार ये सब हो रहा है, कोई बोलता है हम सब खुद ही अपने दुख का कारण होते हैं, कोई बोलता है दैविक शक्तियां कारण होते हैं, कोई बोलता है प्रकृति कारण होती है, तो हम सब भ्रमित हो गए हैं। इसलिए यह निश्चित कर पाना बहुत कठिन है कि हमारे दुखों का वास्तविक कारण कौन है। आप बुद्धिमान हो, आप स्वयं ही निर्णय करो कि कौन हो सकता है, मेरे दुख का कारण कौन हो सकता है। तब जब जब परीक्षित महाराज ने धर्म के रूप में खड़े हुए बेल के मुख से ये सुना, तो वो आसानी से पहचान गए कि कोई साधारण व्यक्ति तो ऐसी बात नहीं कर सकता, और बोले धर्मम ऋभिषि धर्मज्ञ, तुम धर्म की बात कर रहे हो, यह साक्षात धर्म है। क्या धर्म है? कि किसी भी जीव को अपने कष्ट का कारण नहीं मानना चाहिए। हमारे कष्टों का कारण कोई पर्टिकुलर जीव हो ही नहीं सकता। अगर वो मुझे कष्ट दे रहा है, सारी दुनिया को छोड़कर उसने मुझे चुना है कष्ट देने के लिए, तो डेफिनेटली इसका मतलब ये है कि मेरे द्वारा कभी उसको कष्ट पहुंचाया गया होगा, या तो ऐसा होगा कि जो दैवी शक्तियां यानी कि मेरे कर्मों के अनुसार मिल रहा है, या फिर भगवान की इच्छा से मिल रहा है। भक्त जानता है कि भगवान की इच्छा के बगैर तो कुछ भी नहीं हो सकता है, एक घास का तिनका भी भगवान की इच्छा के बगैर नहीं हिल सकता है ना, एक तिनका भी जब भगवान की इच्छा के बगैर नहीं हिल सकता, तो कोई भला भगवान की इच्छा के बगैर मुझे कष्ट कैसे दे सकता है। तो वास्तव में ये जो भक्त सदैव यही सोचता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो भगवान की ही इच्छा से हो रहा है। इसलिए यहाँ पर श्लोक नंबर 22 में एक बहुत ही मर्मज्ञ बात, बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई गई है कि तुम साक्षात धर्म हो, धर्मों से वृष रूप अधिक, वृष का रूप धारण किया तुमने बेल का, लेकिन तुम्हारी तरह कोई साधारण व्यक्ति बात नहीं कर सकता, तुम तो साक्षात धर्म हो, इसीलिए धर्म प्रवेशी धर्म की बात कर रहे हो। और धर्म की बात क्या है? यदा अधर्म कृत स्थानम सूचकस्यापि तद भवेत्। जो अधर्मी को, अधर्म जो करता है, अपराध जो करता है, उसको जो स्थान मिलता है, उसको जो गति मिलती है, सूचकस्यापि तद भवेत्। जो अधर्म की पहचान कराने वाला है, जो उंगली करता है अधर्म को कि इसके कारण मुझे दुख मिल रहा है या ये वजह है मेरे दुख की, तो उसको भी वही स्थान प्राप्त होगा। तो इसलिए तुम क्योंकि धर्म की बात जानते हो, इसलिए तुम साक्षात धर्म हो, और कोई भी ऐसी बात नहीं कर सकता। तो यहाँ पर एक प्रश्न तो उठता है कि जो भक्त होते हैं उनको तो पता है कि सब कारणों का कारण भगवान है। साक्षात स्वयं भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि मेरे ही कारण या प्रकृति कार्य करती है, मया अध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचर। संसार में जो कुछ भी होता है मेरे अध्यक्षता में हो रहा है। भगवान ने स्वयं कहा कि हर कारणों का कारण मैं हूँ। उसके साथ साथ ब्रह्मा जी कहते हैं सर्व कारण कारणम, ब्रह्मा जी भी कहते हैं कि समस्त कारणों के कारण भगवान श्री कृष्ण है। तो फिर भक्त जब जानता है कि हर कारण का कारण जो है वो भगवान है, हर वस्तु का कारण भगवान श्री कृष्ण है, तो फिर वो भगवान को क्यों उत्तरदायी नहीं ठहराता ना? भगवान को उसे उत्तरदायी, अपने दुखों का उत्तरदायित्व भी तो उसे भगवान को ही है ना देना चाहिए ना, कि भगवान ही के कारण मुझे दुख मिल रहा है, भगवान ही कारण है। लेकिन असल में क्या है कि भगवान केवल भगवान नहीं, भगवान की सेंशन तो जरूरी है, भगवान का आप जो कार्य कर रहे हो उसमें भगवान की सहायता, भगवान का अनुमति तो बहुत जरूरी है। भगवान जब तक अनुमति नहीं देते हैं, भगवान जब तक अपनी सहायता नहीं देते तब तक तो कार्य नहीं होता। लेकिन अकेले भगवान उत्तरदायी नहीं है। जैसे यहाँ श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर बताया कि यहाँ पर यह प्रश्न किया जा सकता है कि भक्त को कर्ता की पहचान करने से क्यों विरक्त होना चाहिए। भक्त को साफ साफ बताना चाहिए कि हर चीज भगवान की, अगर किसी को दुख मिलना है तो बोलो भगवान के कारण तुम्हें दुख मिल रहा है। लेकिन जब वह यह निश्चित रूप से जानता है कि भगवान ही सबके परम करता है, तो फिर उसे क्यों मना किया जाता है कि वो क्यों फिर हर दुख का उत्तरदायित्व भगवान को नहीं देता है। यहाँ श्री प्रभुपाद जी कहते हैं परम कर्ता को जानते हुए मनुष्य को चाहिए कि वास्तविक संपन्न कर्ता से अज्ञ नहीं बना रहे। भले उसे ये बात याद रखनी है कि हर किसी कार्य का कारण जो है वो भगवान श्री कृष्ण है। इस संदेह का यह उत्तर है कि भगवान भी प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायित्व नहीं, खाली प्रत्यक्ष यानी कि सिर्फ और सिर्फ भगवान ही उत्तरदायित्व नहीं है, बल्कि क्योंकि उनके द्वारा नियुक्त माया शक्ति के द्वारा ही सब कुछ संपन्न हो रहा है। जो कुछ हो रहा है वो माया के कारण हो रहा है। भगवान की जो माया है, भगवान श्री कृष्ण ने इस संसार में ये जो माया है ना उसका रचा है। माया का मतलब ये होता है मामना नहीं, या माना जो नहीं है, जो हम भ्रमित हो गए हैं ना, हमारे ऊपर माया का पर्दा चढ़ा हुआ है जिसके कारण हम सही तरह से डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। तो ये जो माया है ना वो बहुत ज्यादा प्रबल है, इतनी प्रबल है कि साक्षात भगवान को कहना पड़ा मम माया दुरत्य, कि मेरी जो माया शक्ति है उसको पार कर पाना बहुत कठिन है। इसलिए भगवान कहते हैं जो परीक्षित महाराज हैं वो कहते हैं अथवा देव माया नूनम गतिर अगोचर, अथवा देव माया, या फिर ऐसी बात है यह निष्कर्ष निकलता है कि देव माया जो भगवान की शक्तियां हैं जो नूनम यानी बहुत ज्यादा गति अगोचर, बहुत ज्यादा मतलब उनकी चाल बहुत एक्टिव है वो, और अचिंत्य है, हम उसकी चाल को समझ नहीं सकते। माया की गतिविधियों को समझना बहुत कठिन है, माया को नहीं समझा जा सकता। अगर हर कुछ भगवान की मर्जी से हो रहा है तो ये महाभारत का युद्ध है जिसमें दुर्योधन की मति भ्रमित हो गई। अब दुर्योधन की मति को चलाने वाला भी तो भगवान है ना, भगवान स्वयं कहते हैं सर्व हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, है ना, मैं सबके हृदय में बैठा हुआ हूँ, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, मैं सबके हृदय में बैठा हुआ हूँ। तो फिर दुर्योधन के हृदय में क्या कोई और बैठा हुआ है जो दुर्योधन को यह गलत इंस्ट्रक्शंस दे रहा है कि आपको ऐसा गलत काम करना है? या फिर जैसे हम संसार में बहुत सारी ऐसी चीजें देखते हैं जो कि सही नहीं हो रही हैं, तो क्या उनके अंदर पावर कहाँ से आ रहा है? उनके अंदर भी तो भगवान के द्वारा ही पावर आ रहा है ना, जो गलत काम कर रहे हैं उनको पावर कौन दे रहा है? भगवान ही पावर। अभी देखो हमारे हम लोग कभी घर मंदिर में जाएं और मंदिर में गुरु महाराज बोले कि आज इतना मंदिर साफ किसने साफ क्यों नहीं है, मंदिर में इतनी ज्यादा मट्टी पड़ी हुई है। तो कोई भक्त बोले हर सब कारणों का कारण तो भगवान है, तो ये मट्टी का कारण भी भगवान ही है। सब कुछ हम भगवान के ऊपर थोप दें, इस तरह से जो भी अपराध हो रहा है वो सब भगवान के ऊपर। ऐसे नहीं है, भगवान प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी नहीं है। इसका मतलब ये है कि भगवान की जो माया शक्ति है उसे भगवान ने यह डिपार्टमेंट सौंपा है कि आप सबको भ्रमित करने का प्रयास करो, मुझसे दूर करने का प्रयास करो। वो माया जो है वो जीव को भगवान से दूर करने के लिए प्रयास करती रहती है। असल में ये हमारी टेस्टिंग है। अब देखो यहाँ पर ये बात ध्यान से सुनने की है, जब हर वस्तु का कारण कृष्ण है, अब हम घर में बैठे हुए हैं, घर में अगर संध्या के टाइम पर हमारे बच्चे बैठकर टीवी देख रहे हैं तो ये बुद्धि किसकी, ये वो उसका कारण क्या है? वो अगर टीवी देखने की इच्छा कर रहे हैं, मतलब टीवी देख रहे हैं वो संध्या के टाइम पर, तो इसका मतलब है उसका कारण, जब हर वस्तु का सर्व कारण कारण तो उसका भी कारण भगवान ही हुए। तो देखो यहाँ पर ये बात समझने की है कि कृष्ण हर वजह की वजह है, हर कारण का कारण है। तो कृष्ण जीव की परीक्षा लेने के भी कारण है, है ना। कृष्ण इज कास और टेस्टिंग अस, है ना, हमें हमारी परीक्षा ले रहे हैं। ये माया जो है वो एक परीक्षा, हमारी परीक्षा है कि हम इसमें सफल हो रहे हैं अथवा नहीं हो रहे हैं। अब परीक्षा में क्या होता है, भगवान स्वयं कुछ नहीं करते, भगवान जो है वो हर मनुष्य को बुद्धि प्रदान करते हैं और कार्य करने की शक्ति प्रदान करते हैं। बुद्धि प्रदान कर दी, कार्य की शक्ति प्रदान कर दी, उसके बाद दो रास्ते देते हैं, एक सत्य का कठिनाई से भरा हुआ और दूसरा बहुत आसान मगर अपराध से भरा हुआ। अब यह डिसीजन आपको करना है, आपके पास बुद्धि है, आपके पास मनुष्य जीवन है, आपके पास शास्त्र है, आपके पास गुरु है, इतना सब भगवान ने आपको दे दिया और भगवान क्या करे। और उस समय जब आपके पास दो रास्ते हैं, एक सही है एक गलत है, उस रास्ते में से आपको कौन सा चुनना है ये आपका अपना डिसीजन है। वो डिसीजन भगवान नहीं लेता, वो इच्छा आपकी अपनी है, आप अपने बुद्धि से अपना निर्णय लो कि किस रास्ते पर चलना है आपको। अब देखो कोई लोग ऐसे भी बोलते हैं भगवान को माया बनाने की जरूरत ही क्या थी, ये माया ना होती तो फिर हम आसानी से भगवत प्राप्ति कर लेते, माया हमें हर रोज भगवान से दूर करती रहती है। लेकिन देखो माया तो एक परीक्षा है ना, जब तक आप परीक्षा में पास नहीं होगे तब तक तो आप भगवान को प्राप्त भी नहीं कर सकोगे। जैसे माया तो इस बात की परीक्षा है कि आपके अंदर भगवान को प्राप्त करने की इच्छा कितना परसेंट बन गई है, है ना। अगर जब तक आपके अंदर 100% कृष्ण प्राप्ति की इच्छा नहीं होगी तब तक तो आप कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकते। परीक्षा तो जरूरी है ना, और इस परीक्षा में 100% मार्क चाहिए। अब इसमें क्या है कि अनन्यास चिंतयंतो माम, और कोई नहीं सिर्फ मेरा चिंतन। भक्ति का मतलब होता है अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माध्यनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तम। जब तक अन्य अभिलाषिता समाप्त नहीं होती है तब तक तो टेस्टिंग होता रहेगा। कब जब तक कि और कोई इच्छा और कोई रास्ता गलत आप नहीं चुनोगे। अब ये कैसा है, गलत रास्ते कैसे हैं, जैसे एग्जाम्स होते हैं तो बच्चों को कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं जिनको एमसीक्यूज कहा जाता है। एमसीक्यूज में क्या होता है, चार ऑप्शंस होते हैं जिनमें से तीन रॉन्ग होते हैं एक सही होता है। बच्चे को पहले स्टडी करा दी जाती है और उसके बाद उसको खुद से डिसाइड करना है कि कौन सा उत्तर सही है। अब आप ये तो नहीं कह सकते कि भाई टीचर ने गलत लिखा ही क्यों,
है ना। टीचर अगर गलत वाला लिखता ही नहीं तो फिर बच्चा गलत वाला चुनता भी नहीं। लेकिन अगर आपको सिर्फ सही उत्तर बता दिया जाए तो आपकी परीक्षा कैसी? परीक्षा तो वही है जिसमें से आप गलत में से सही को चॉइस करके, चार गलत, अभी देखो चार में से तीन गलत हैं तो फिर मतलब अगर आपने सही से पढ़ा नहीं है तो बहुत चांसेस हैं कि आप गलत रास्ते पे ही जाओ। तो इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य यही है कि अथासो ब्रह्म जिज्ञासा, सबसे पहले आओ जिज्ञासा करो कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है। जब आपको पूरा पता चल जाए उसके बाद वही रास्ता जो बिल्कुल सही, जो एक बोनोफाइड स्पिरिचुअल मास्टर के द्वारा आपको प्राप्त होता है, उस पर आप अगर 100% चलोगे सही तभी आपको सही मार्ग मिलेंगे और आप अपने गंतव्य को, आप अपने उद्देश्य को प्राप्त करोगे। लेकिन यहां पर ये बात भी समझनी है कि जो आप डिसीजन ले रहे हो उसका कारण भी माया है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण से जब अर्जुन ने पूछा कि अथ केन प्रवृत्तोऽयं पापं सरति पुरुष, कृष्ण मुझे ये बताओ कि जीव पुरुष मनुष्य वो क्यों अपराध करता है। ऐसा लगता है बलादिव नियोजित, ऐसा लगता है कि कोई बहुत ही बलवान शक्ति उससे अपराध करा रही होती है। अनिच्छन अपि, उसकी इच्छा नहीं होती है, अनिच्छन अपि पाश्रय, किसी की भी इच्छा नहीं होती है कि वो अपराध करे, फिर भी कोई शक्ति उससे अपराध करवा रही होती है। तब भगवान बोलते हैं तुम ठीक कह रहे हो अर्जुन, एक शक्ति तो है और वो मेरी शक्ति। भगवान कहते हैं काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवा, ये रजोगुण जो है जब वो किसी के ऊपर हावी हो जाता है तो वो अपराध करता है। ये रजोगुण क्या है? ये भगवान की शक्ति है। भगवान ने कहा दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्या, ये त्रिविर गुणमयी जो तीन गुणों वाली शक्ति मेरी शक्ति है, भगवान कहते हैं। तो ये शक्ति रजोगुण सत्वगुण और तमोगुण, ये भगवान की शक्ति है। और ये जब किसी के रजोगुण किसी के ऊपर आक्रमण करता है तो काम उत्पन्न होता है, और जब काम उत्पन्न हो जाता है तो वो काम आपको गलत कार्य करने पर विवश कर देता है। तो भगवान ने कहा तो फिर, लेकिन भगवान ने आगे उस काम से बचने का रास्ता भी बताया। भगवान ने कहा इंद्रियां मन और बुद्धि इस काम के रहने की जगह है, जहां पर रहकर काम जो है वो आपसे अपराध करवाता है, इसलिए इंद्रियां मन और बुद्धि को नियमित करने की आवश्यकता है ना। इंद्रियां जो है वो सेना, जो सेना होती है वो है, मन जो है वो मंत्री है, जो मंत्रणा करते हैं ना, जो सेना को संभालते हैं, उनको निर्देशक करते हैं कि भाई ऐसे ऐसे युद्ध करना है। और दूसरा बुद्धि जो है वो महामंत्री है, जो मंत्री को भी चला रही होती है। तो अब जो मंत्री, जो सेना है वो दुश्मन से जाके मिली है, वो काम के वश में आ गई, ठीक है। जो मंत्री जो सेना को चलाता है वो भी सेना के पास चला गया, उसी की बात मानेगा। अब जो बुद्धि है, जो महामंत्री है, उसको भी जो दुश्मन है उसने खरीद लिया, यानी सबके ऊपर काम का कब्जा हो गया। अब तो राजा अकेले रह गया ना, यानी हम तो अकेले रह गए। हमारी आत्मा ये अपराध करना नहीं चाहती है, आत्मा को पता है कि हम इस संसार में अपराध करने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आए। लेकिन वो क्या करे, उसकी पूरी सेना, उसका मंत्री, उसका महामंत्री जब दुश्मन ने उसके ऊपर कब्जा कर दिया तो वो क्या करे। अब उसको, वो उसके लिए भगवान कहते हैं तस्मात्म इंद्रियाण आदो नियम्य भरतर्षभा, इसे भी क्या करना है, सबसे पहले अपनी इंद्रियों को नियमित करना है। जब आप इंद्रियों को नियमित करोगे, यानी सेना जो है उस पर आपने कब्जा कर लिया, उसके बाद क्या होगा, अभी मंत्री किधर जाएगा, सेना सब आपकी बात मानेगी, तो फिर मंत्री की बात तो कोई मानेगा ही नहीं, उसको दुश्मन उसको क्या करेगा अकेले, एक बंदे को दुश्मन कुछ नहीं चाहिए, सेना चाहिए पूरी। लेकिन मंत्री जब सेना जब मंत्री के आदेश का पालन ही नहीं कर रही, आपके आदेश का पालन कर रही है, तो फिर मंत्री वापस से आ जाएगा। मन जो है वो इंद्रियों से टच होता है, यानी इंद्रियां जब कोई भी वस्तु को देखती हैं या सुनती हैं तो मन उसके ऊपर आकर्षित हो जाता है। लेकिन इंद्रियों को जब आपने कंट्रोल कर दिया, भगवत सेवा में लगा दिया, तो मन क्या करेगा, वो भी धीरे 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 पलटी करेगा और भगवत सेवा में आ जाएगा। और जब मन उसमें लग गया तो बुद्धि क्या करती है, वही डिसाइड करती है, डिसीजन उसी विषय में लेती है जिसके लिए मन उसे आग्रह करता है। मन किसी चीज के लिए किसी चीज को पसंद करने लगता है, फिर बुद्धि उसी के लिए मतलब योजना बनाने शुरू कर देती है कि मैं किस तरह से उस वस्तु को प्राप्त करूं। अब इंद्रियां भगवत सेवा में लग गई, मन भगवत चिंतन में लग गया, तो बुद्धि क्या करेगी, भगवान को कैसे प्रसन्न किया जाए, फिर वो अपराध के विषय में नहीं सोचेगी, भगवत सेवा के विषय में सोचेगी। तो सबसे पहले हमें अपने आप को नियमित रखना है। लेकिन अब अगर दूसरों के द्वारा हम, ये तो हमारे लिए हुआ कि हमें क्या करना है, लेकिन दूसरों के द्वारा यदि हमें कष्ट मिल रहा है, कोई हमारे कष्ट का कारण बन रहा है, तो भी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये भगवान के द्वारा मुझे कष्ट मिल रहा है। बल्कि एक भक्त का हमेशा ये विचार होना चाहिए कि भगवान जो है उस उनके द्वारा ये कष्ट देकर भगवान मेरा शुद्धिकरण करना चाहते हैं, ये इस कष्ट के द्वारा भगवान मेरी परीक्षा ले रहे हैं ताकि मैं इस परीक्षा में सफल हो जाऊं। भगवान मुझे अपने पास बुलाना चाहते हैं, और जब तक मेरे हृदय में थोड़ी भी गंदगी रह जाएगी, जब तक किसी के लिए ईर्ष्या, किसी के लिए वैर भाव मेरे मन में रह जाएगा, तब तक तो मैं भगवान के योग्य नहीं बनूंगा। इसलिए भगवान मेरे लिए मेरी परीक्षा ले रहे हैं कि क्या उस व्यक्ति के प्रति मेरे हृदय में कोई घृणा आती है, कोई अनादर, कोई अपमानजनक सोच आती है कि वो मेरे साथ ऐसा कर रहा है, मैं तो कितना अच्छा हूँ। जिस समय आपके मन में ये इच्छा आ गई ना कि मैं तो कितना अच्छा हूँ, मैं तो किसी के साथ बुरा नहीं करता, ये मेरे साथ बुरा करता है, तो उसी समय आप वापस से डाउन चले जाते हो अपनी भक्ति के स्तर से। सदैव ये सोचना है कि मुझे किसी को दुख नहीं देना है, तरोरपि सहिष्णु न, इसी का तो मतलब है कि खुद को घास के तिनके से भी कमतर समझना है, उसके ऊपर सब पैर रख के जाते हैं, है ना। एक घास का तिनका तृणादपि सुनी जीवना, कहना कितना आसान है, लेकिन कभी घास के तिनके को देखा भी है, किसी ने किसी भी नोकीले शूज पहने होते हैं वो कभी नहीं देखता, चलो चींटी को कीड़े को देख सकते कि भाई ये इसको नहीं कुचलेना ही, बहुत सारे लोग ऐसे सोच सकते हैं, मगर घास के तिनके की कभी किसी ने परवाह की है आज तक? महाप्रभु कहते हैं आपको घास के तिनके से भी ज्यादा विनम्र बनना है, उससे ज्यादा विनम्र बनना है। कोई भले कुछ भी करे, कुछ भी करे, आपको यह रियलाइज नहीं करना है कि उसने मुझे दुख दिया, बस ये मेरी कृष्ण की कृपा है, वो मुझे इस दुख के द्वारा निखारना चाहते हैं, वो इस दुख के द्वारा मेरी प्रगति करवाना चाहते हैं, ये इच्छा मन में होनी चाहिए। और दूसरा सहिष्णुना, तरोरपि सहिष्णुना, इतने सहिष्णु बनना है कि वृक्ष की तरह जो दुख दे रहा है उसको आनंद, जिसके कारण मुझे दुख मिल रहा है वो कौन है, जो भी है वो, लेकिन उसको, जैसे वृक्ष को जो दुख देता है उसको वो कभी भी पत्थर नहीं देता, उसको वो फल ही देता है, उसको आनंद देता है। जो उसको काटने के लिए आता है ना लकड़हारा, वो जब थक जाता है ना तो उसी वृक्ष के नीचे आराम करता है और उसी वृक्ष के नीचे ठंडी छांव को अनुभव करता है। तो इस तरह से जो भक्त होते हैं वो किसी को भी अपने दुख का कारण नहीं मानते हैं, वो दुख को ये सोचकर सहते हैं कि ये कृष्ण की कृपा है, कृष्ण मुझे अपनाना चाहते हैं और ये दुख देकर वो मेरी परीक्षा ले रहे हैं, मुझे इस परीक्षा में सफल होना है, ये सोचकर कि ये जो दुख देने वाला है वो मेरा शुभ चिंतक है, क्योंकि इसी के इसी एग्जाम के बाद ही तो मैं कृष्ण को प्राप्त करूंगा। तो श्री प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर बात बताई है कि माया सदैव भगवान की परम सत्ता के विषय में संदेह उत्पन्न करती है। माया का काम है कि वो हमारे हृदय में संदेह उत्पन्न करती है। तो धर्म अच्छी तरह जानता था कि परमेश्वर की इच्छा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है, तो भी माया उसे संशय में डाल रही थी, जिससे यह परम कारण बताने से कतरा रहा था। अभी वो देख रहा था कि दुख का कारण वो है, लेकिन फिर भी वो उसको कारण नहीं मान रहा था, क्योंकि वो जानता था कि समस्त कारणों के कारण भगवान है और भगवान की माया के कारण सब लोग भ्रमित हैं। ये कोई रजोगुणी है, कोई तमोगुणी है, तो सब भगवान की माया के कारण भ्रमित हैं। इसीलिए लिखा है कि अथवा देव मायाया नूनम गति गोचरा, कि भगवान की जो माया है उसकी गति जो है वो अगोचर है, अचिंत्य है, बहुत दुष्कर है, उसको नहीं समझा जा सका, जा नहीं सकता। चेतसो वचसश्चापि, चेतसो यानी अपने मन से, चित्त से, अपनी वाणी से यानी मानसिक चिंतन से और शब्द चातुरी से, वर्ड जगरी से उनका अनुमान लगा नहीं लगाया जा सकता। कोई भी ना तो बुद्धि के द्वारा इस बात का अनुमान लगा सकता है कि क्या कारण है, माया कितनी माया शक्तिशाली है, उसका कोई अंदाजा नहीं लगाता, और ना ही अपनी शब्द चतुराई से ये बता सकता है। तो अभी इस माया से बचने का क्या तरीका है, भगवान श्री कृष्ण बताते हैं भगवद गीता में कि दैवी की एष अवुणमयी मम माया दुरत्याया मामे वही प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। वैसे तो मेरी इस माया को पार करना बहुत कठिन है। गुणमयी, ये तीन गुणों से बनी हुई है, कभी रजोगुण तुम पर असर करेगा, कभी तमोगुण करेगा, और कभी सत्वगुण में आकर तुम अपने अपने डिसीजन लेते रहोगे। लेकिन जब तक तुम किसी भी गुण में बंधे हुए हो, तब तक तुम शुद्ध सत्व में नहीं आ जाते हो, तब तक मेरे पास नहीं पहुंच सकते। इसलिए मेरे पास पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस माया को लांघना पड़ेगा, और माया को लांघने के लिए क्या करना पड़ेगा, मामेव ये प्रपद्यन्ते, मेरी शरण में आना पड़ेगा। मेरी शरण में आने का कैसा कारण है, वो बस ऐसा ही है कि हमें भगवान के उन शुद्ध भक्तों का जो इन माया के बंधन से मुक्त है, क्योंकि जो बंधा हुआ है वो कभी भी हमें छुड़ा नहीं सकता, है ना। जो बंधन में है वो भला हमें कैसे छुड़ा सकेगा, जिसके खुद भी हाथ पांव बंधे हुए हैं। तो ऐसा शुद्ध सतगुरु जो कि खुद बंधन में नहीं है, जो कि भगवान की माया से आजाद है, उसकी उसके सानिध्य से, उसके आदेशों को पालन करके, और जब हम उनके आदेशों का पालन करते हैं, भगवान के पवित्र, ये जो भगवान का पवित्र नाम है ना, नाम और नामी में कोई फर्क नहीं है। तो जितना पावर भगवान के, अभी देखो भगवान ने पहले तो ये कहा कि माया से बचने के लिए आपको मेरी शरण में आना पड़ेगा, है ना। अब मेरी शरण में आने के लिए माया से पार करना पड़ेगा, तो फिर भगवान को खुद आना पड़ेगा ना हमें माया से पार करने के लिए, क्योंकि हमारे अंदर तो शक्ति नहीं, हम तो माया के अंदर फंसे हुए हैं। हम माया के अंदर फंसे हुए भगवान को, भगवान के पास कैसे जा सकते हैं। भगवान ने कहा मुझ तक पहुंचने के लिए माया से पार करना पड़ेगा। जब भगवान ने ये सोचा कि अभी ये सब तो माया के अंदर पड़े हुए मुझ तक कैसे पहुंचेंगे, तब भगवान स्वयं महाप्रभु के रूप में आए और हमें महामंत्र का दान दिया। महावदन्या है महामंत्र महाप्रभु, और इसलिए महामंत्र का दान देके कहा कि लो तुम बाहर आ नहीं सकते, लेकिन भगवान तो माया के अंदर आकर तुम्हें छुड़ा सकता है, ये नाम रूप में साक्षात भगवान में तुम्हें दे देता हूँ। इसीलिए महाप्रभु कहते हैं नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्र अर्पिता। इस नाम में महाप्रभु कहते हैं कि भगवान ने अपनी सारी शक्तियां समर्पित कर दी हैं। अब ये महामंत्र तुम्हें मिल गया ना, तो समझो इस महामंत्र के द्वारा आप इस योग माया को महामाया में परिवर्तित कर दोगे। ये योग माया ही आपको भगवान के साथ संबंध स्थापित करने में सहायता करने लगेगी। तो ये जो महामंत्र है उसके अंदर वो सारी शक्तियां जो कि भगवान के अंदर है वो सारी इसमें भर दी है, और प्लस नियमित सिमरणे न काला, सिमरण करने का भी कोई समय नहीं है, इसलिए केवल महामंत्र के द्वारा ही हम भगवान की माया को पार कर सकते हैं, लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमें न अनुराग दुर्दैवमीदृश मेहाजनो न, इस संसार में अगर जीव का कोई दुर्भाग्य है ना, तो ये नहीं है कि उसके पास धन नहीं है, उसके पास घर नहीं है, उसके पास संतान नहीं है। दुर्भाग्य है तो ये है कि भगवत नाम में रुचि नहीं है, भगवान के नाम से प्रेम नहीं है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य है जीव का कि भगवान के पवित्र नाम को जपने की इच्छा नहीं हो रही है। तो जब हम भगवान के पवित्र नाम का जप करेंगे तो माया हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ेगी, और संसार में जो दुख कष्ट मिल भी रहे हैं ना, तो वो बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे एक बच्चा होता है जिसके एग्जाम्स हो रहे होते हैं और उसने अपनी एग्जाम की पूरी तैयारी कर ली है, तब वो एग्जाम के देने के टाइम पर कितना आनंदित होता है ना, उसको बहुत आनंद आ रहा होता है क्योंकि उसको पूरी तैयारी की हुई है उसने। दुखी तो वो होते हैं जिन्होंने पढ़ा नहीं, जिन्होंने तैयारी की नहीं है, तो जो माया के साथ युद्ध करने के लिए पूरे प्रिपेयर हैं, जो अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं, जो अपनी चैंटिंग को पूरा करते हैं, उनके लिए तो ये माया की परीक्षा बिल्कुल सरल है और वो आनंद से इसमें पार हो जाते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि पैर साथ रहिएगा और मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं। हरे कृष्ण।